علم و عمل کا کارواں آئی ایس او ہے پاک وطن کے پاس بائی ایس او.
السلام علیکم. میرا آج کا مقصد پریزنٹیشن سکلز نہیں ہے, اسٹڈی سکلز نہیں ہے, دو میسج میں آپ کو انفیکٹ تین میسج دینا چاہوں گا, لیکن میں جو یہاں پہ پریزنٹیشن دوں گا وہ بھی ہیلپ پہ آفر نہیں ہے کہ وہ کچھ گائڈ لائنز ہیں پریزنٹیشن سکلز کے متعلق جو کہ آپ اس کو لازمی اپلائی کریں, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ آپ اسٹڈی سکلز ہیں وہاں پہ ہر بندے کے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. کوئی بندہ جو ہے وہ اکیلا بیٹھ کے پڑھنا پسند کرتا ہے, کوئی گروپ اسٹڈی کرنا چاہتا ہے, کوئی بندہ جو ہے وہ ویڈیو کے تھرو جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے, کوئی آڈیو یوز کرتا ہے, کوئی ویڈیو یوز کرتا ہے. تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے وہ ایک پوائنٹ کے ساتھ اسٹک کرتے ہیں, آپ کو جو چیز آسان لگتی ہے آپ اس کو اپلائی کریں. ایک میں میڈیا آپ کے سامنے چلانا چاہوں گا, دو ان فیکٹ, اور اس کے بعد میں پریزنٹیشن کا The man with one leg and with his children. If you think you suffer in life, do you suffer as much as he does? Enjoy life, how it is, and as it comes, things are worse for others and they are a lot better for us. There are many things in your life that will catch your eyes, but only a few will catch your heart, pursue those. Hate, veggie, starvation in Somalia and so many other African countries, they don't have even food to eat. Your parents, they care about you, and many people over there, they don't have parents even. You have shoes, you have each and everything which is necessity of life, but they don't have even sleeping place as well. They don't have bed to sleep. Are you still complaining? We are fortunate, we have much more than what we need to be content. Let's try not to feed this endless cycle of consumerization and immortality. So thank you very much for watching this video, and my purpose of showing this video is that हम लोगों की expectation बहुत ज़्यादा high होती है, हम लोग सोच रहे हैं हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन जब हम अपने निचले level पे देखें अपने नीचे वाले लोगों को, तो हमें फिर पता चलेगा कि life के अंदर क्या चीज़ है और क्या चीज़ अच्छी हो सकती है। और ये भी नहीं कि आप उनकी तरह हो जाए, लेकिन आप वो सब सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अंदर अपने अंदर जो है वो पैदा करें। एक तो ये कि आपका यकीन कि आप ये कर सकते हैं, और जब तक आपके पास यकीन नहीं होगा, आप ये समझेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, उस वक्त तक आप ट्राई नहीं करेंगे, और जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे उस वक्त तक आप अचीव नहीं कर सकते। सो विल कम टू द मेन टॉपिक, एज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस उन्होंने करवा दिया है, वायरल एजुकेशन से मेरा ताल्लुक है। प्रेजेंटेशन स्किल्स में मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर आप नोट्स ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं ईमेल एड्रेस अपना एम पे आपको दूंगा, मेरा सेल नंबर भी होगा, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं ईमेल कर दूंगा ये प्रेजेंटेशन। अगर आप इस प्रेजेंटेशन को लिखना शुरू कर देंगे तो आपकी कंसंट्रेशन लूज होगी, तो आप कोई चीज़ समझ नहीं सकेंगे, कोई चीज़ सीख नहीं सकेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट प्लीज, कॉन्टेंट्स टू थिंग्स आर वी डिस्कस, फर्स्ट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स, और सेकेंड ईयर प्रेजेंटेशन गाइडलाइंस, कि गाइडलाइंस क्या कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें डिस्कस करें। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन स्किल्स, नेक्स्ट प्लीज, फोर स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंटेशन स्किल्स, वेर यू आर डिलीवरिंग सम प्रेजेंटेशन, फोर स्टेप्स, फर्स्ट थिंग इज प्लान, सेकेंड थिंग इज प्रिपेयर, एंड थर्ड थिंग प्रैक्टिस एंड देन प्रेजेंट। These four things are very important, and you fail to plan even a single thing, तो ये चीज भी सबसे मिस होगी, तो समझे आपको कुछ आप नहीं कर सकेंगे, प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। प्लानिंग नहीं है प्रॉपर, प्रेजेंटेशन नहीं होगी, तैयारी नहीं की प्रेजेंटेशन नहीं होगी, और प्रैक्टिस नहीं की तभी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकेंगे, और प्रेजेंट उस वक्त ही कर सकेंगे जब ऊपर वाली तीन चीज़ें होंगे। प्लानिंग का फर्स्ट पार्ट जो कि हम डिस्कस करेंगे, प्लानिंग कोई बंदा शेयर मुझसे करना चाहिए कि प्रेजेंटेशन की प्लानिंग में क्या चीज हो सकती है। टॉपिक सिलेक्शन और पिक्चर की प्रेजेंटेशन प्लानिंग के अंदर हमें क्या क्या चीज किस चीज की जरूरत है। टॉपिक हो गया, एक कवर हो गया, उसके अलावा मटीरियल, वेरी गुड पॉइंट, टाइम प्लानिंग, एक्सीलेंट। सो नेक्स्ट, व्हाट इज योर ऑडियंस, फ्यू थिंग्स आई विल ऐड इनटू इट, कि आपकी ऑडियंस है। अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल के बच्चों के सामने बात कर रहा हूँ और मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर दूँ तो कोई बंदा समझेगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, मैं स्कूल के बच्चों को पता नहीं चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ। वाई आर दे देयर, कि वो यहाँ पे हैं, कि उनका मकसद क्या है, ठीक है। वो अगर आप कोई इस्लामिक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो ओबियसली आप कन्फाइंड रहेंगे कि इस्लाम के मुतालिक जो है जितना मटीरियल आप उनके साथ डिस्कस करें, और अगर वो प्रेजेंटेशन स्किल्स के टॉपिक के ऊपर आए हुए हैं और आप उनसे फुटबॉल के वजह से डिस्कस करना शुरू कर दें, फिर that doesn't make any sense. What is your goal? कि आपका गोल क्या है? आज मैं आपको शेयर करता हूँ मेरा गोल क्या है. मेरा गोल ये है, आज ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों को प्रेजेंटेशन स्किल्स के हवाले से सारे वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो कि जरूरी है. आप यूनिवर्सिटी में जाएँ, आप अपने प्रोफेशनल कैरियर में जाएँ, कहीं पर भी प्रेजेंट करने के लिए इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको मैक्सिमम चीज़ें आ जाएँ. जो नहीं आएगी मैं फिर भी आपके साथ कॉन्टेक्ट में रहूँगा. तो आई एस ओ आई एम रियली थैंकफुल फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट आई एस ओ के हवाले से कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया. और इंशाल्लाह ताला आई विल बी इन टच विद यू आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से, आपके फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से. जो भी आप करना चाह रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट मी. और आप डेफिनेटली जॉब करने जाएंगे उसके लिए इंटरव्यू की भी ज़रूरत है. इंटरव्यू स्किल्स होने नहीं आपके पास तो आप तभी कामयाब नहीं हो सकते. आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं तभी कामयाब नहीं हो सकते. इन शॉर्ट लेकिन What is your goal and then how long will it be? क्या ये दो घंटे के लिए होगी, एक घंटे के लिए? मैं यहाँ पे आया, मुझे अजीब सा ये बताया कि आपके पास एक घंटे का टाइम है जिसमें आप 40-45 मिनट आप प्रेजेंटेशन वगैरह देंगे और देन उसके बाद जो है आप आंसर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा. तो मुझे उसके हवाले से जब तक मैं ये प्रैक्टिस नहीं करूँगा मुझे पता नहीं चलेगा मुझे कितना टाइम कंज्यूम होगा. 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन आप प्रैक्टिस किस तरह करेंगे वो मैं आपको सारा तरीका बताऊँ. वेयर विल इट टेक प्लेस? मैं अदीम भाई से फोन पर भी पूछ रहा, मैंने कहा कहाँ पे होगी, कितना हॉल कितना बड़ा होगा. और ये मैं नीचे आया, मैंने हॉल वगैरह देखा. वो इसलिए जरूरी होता है ताकि आपको आई कॉन्टैक्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैं अगर इस तरफ मूव करके प्रेजेंटेशन दी जाऊँ और आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, तो इंटरेस्ट लूज कर देंगे. तो आई कॉन्टैक्ट हर बंदे के साथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक आप आई कॉन्टैक्ट नहीं रखेंगे उस वक्त तक आपको पता ही नहीं चल सकता. इस वजह से मैं आया, मैंने कहा यार देखो प्लेस कौन सी है, ऑडियंस कौन सी है. मैंने इनसे पूछा कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उनका यूनिवर्सिटी के कॉलेज के स्टूडेंट हैं. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. आई विल डिस्कस वन बाय वन इन द नेक्स्ट क्लास. स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले इंट्रोडक्शन. मैं इंट्रोडक्शन आपको करवा दिया. मैं एग्जाम्पल के साथ साथ चलूंगा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ. मेन थीम जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे और देन एंड पे जो है वो उसकी समरी होगी नेक्स्ट वीक. इंट्रोडक्शन का पर्पज यह है कि गेट अटेंशन, कि एवरीबॉडी शुड बी अटेंटिव. कोई बंदा सो नहीं रहा होना चाहिए. मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा सो रहा है. कोई सो रहा है तो साथ वाला मेहरबानी करके इसे जरा जगा दे. तो जो मेन थीम है वो कॉन्टेंट होगा आपका. जो कॉन्टेंट आपने डिस्कस किया करना है और उसके बाद समरी में जो है नेक्स्ट की मैसेज आप क्या डिलीवर क्या करना चाह रहे हैं बताने के चाह रहे हैं. अब मैं आपके हवाले से डिस्कस करता हूँ. ये तो प्रेजेंटेशन स्किल की होगी ना. आप यूनिवर्सिटी में हैं, आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है. लेट्स सपोज यहाँ पे कोई एक बंदा मुझे बता दे कौन सा क्या कोर सब्जेक्ट कौन सा है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग. आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मुझे एक्सपीरियंस नहीं. कोई और इन्वायरमेंटल साइंस. ये इन्वायरमेंटल साइंस है. इसमें कह दिया जाता है आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी है के हाउ वी कैन कोप विद द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है. उसके बाद ये क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मटीरियल इकट्ठा करेंगे कि क्या क्या है. उसके लिए आप नेट यूज कर सकते हैं. उसके बाद ये मेन कंटेंट देखेंगे कि मेरे पास नॉलेज है उसको मैं कैसे स्लाइड्स के अंदर जो है बना सकता हूं. जस्ट गिव यू एन एग्जांपल दैट यू शुड बी फीलिंग प्राउड एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी हैविंग ऑल द नेसेसरी थिंग्स व्हिच यू नीड. आपके पास वो सारा मटीरियल नहीं होगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे. नेक्स्ट प्रेपरेशन. अब प्रेपरेशन का हल्दी मतलब नहीं है आप किचन में जाकर जो है वो फ्राई अंडा बनाने शुरू कर दें. तो प्रेपरेशन का मतलब ये है कि आपको तैयारी करनी है और तैयारी के लिए जो चीज़ें जरूरी है. नेक्स्ट स्पीकर्स थ्री फ्रेंड्स. स्पीकर्स के तीन फ्रेंड होते हैं जो कि नंबर वन पर्सनल नोट्स. कि जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं आप नेट से डाटा ले रहे हैं आपके पास बुक्स हैं आप अपने पर्सनल नोट्स बनाएंगे आपके प्रेजेंटेशन डाल देंगे. कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं वो आप प्रेजेंटेशन में डालते हैं. नेक्स्ट प्लीज विजुअल्स. कि आपने विजुअल जो है क्या देना है प्रेजेंटेशन के अंदर. कि क्योंकि विजुअल का इम्पैक्ट है और आप मेरे ख्याल है मेरे साथ एग्री करेंगे कि जितना वीडियो और विजुअल का इम्पैक्ट होता है उतना ऑडियो का नहीं होता. ऐसी मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाई जो प्रेजेंटेशन दिखाई आपके दिमाग में रहेगी काफ़ी देर और जिन लोगों ने महसूस की है वो उनके दिमाग में सारी जिंदगी रहेगी. वो ये चीज़ें फील करेंगे कि ये चीज़ें वाकई हैं और हमें इसके साथ अपनी एक्सपेक्टेशन को हाई नहीं रखना बल्कि अपनी लेवल को अपने टैलेंट को बढ़ाना है प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाना है ताकि लोगों की एक्सपेक्टेशन हमसे बढ़े. लोग आपको खुद आके कहेंगे जी आप हमारे पास आए, आप हमारे पास। नंबर थ्री, हैंडआउट्स। Handouts are also very important. When you are giving presentation in university, then you need to give handouts. Handouts mean कि आपने जो सारी presentation दी है उसका जो है वो summary क्या है, आप उसके अंदर बताना क्या चाह रहे हैं। Handouts का फायदा ये होता है कि लोगों को जो main points हैं वो memorize हो जाते हैं और उसके बाद ये नहीं भाई सो रहे इसके अंदर था। आप इधर आ जाए, इधर अभी मैं आपको एक आपके साथ जो बंदा बैठा उसे जानते हैं सवाल पूछते आपके साथ जो बंदा बैठा उसमें कौन सी कलर की शर्ट है आप आ जाए जो साथ में बता पड़े। तो इनकी ऑब्जर्वेशन ये है कि इन्होंने येलो कलर की शर्ट पहनी और ग्रीन कलर की जो है वो पैंट पहनी हुई, ठीक है, टोटली डिफरेंट हो गया। तो इसकी एग्जांपल ये है कि हम लोग बॉदर नहीं करते कि हमारी एक्टिव हो गया, हम लोग सिर्फ अपने आप में रहते हैं, हम लोग कहते हैं बस मैं ही खुद ही हूँ, लेकिन हमें चाहिए कि चीजों पर गर्व करें। थैंक यू वेरी मच। तो ये एक एग्जांपल छोटी सी मैंने आपको दी। हम लोग सारे इसी तरह करते हैं, हम लोग कहते हैं यार स्टडी चल रही है बस ठीक है, इसी तरह जिस पेस पर चल रही है उसी तरह चलनी चाहिए। हम लोग बॉदर नहीं करते कि यार हमें क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है कि हम ऊपर जा सकें। हम लोग क्यों नहीं ऊपर जा सकते, हम लोग जा सकते हैं, लेकिन हम अपनी जो रूटीन बनी हुई है, एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि हमने उसी टाइम फ्रेम में रहना है, हम लोग पढ़ रहे हैं। जो बंदा टॉप करता है उसके अंदर क्या इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होती है, वो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होती हैं वो कंसिस्टेंट होता है, वो हार्ड वर्कर होता है, ठीक है, और वो कॉन्स्टेंटली परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट एफर्ट्स करता है। कि एक बंदा उसको नाकामी हुई, उसके मार्क्स कम आ गए, अगली दफा वो डिप्रेस होकर बैठ गया, नहीं यार अब तो मैं तैयारी नहीं कर रही, टीचर ने मेरे साथ ये ज्यादा कर दी, ये हो गया। हम लोगों को परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट एफर्ट करनी है क्योंकि जिंदगी जो है ना वो बहुत शॉर्ट है। अब मैं आपको इसकी एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मोहम्मद अली, मोहम्मद आता जो बॉक्सर है, मोहम्मद अली को कौन कौन जानता है, जो वर्ल्ड अमेरिकन बॉक्सर। मोहम्मद अली ने कहा कि जी उसने एग्जांपल कोट की, उसने कहा हमारी जिंदगी इस तरह की, उससे किसी ने सवाल पूछा आप जो है अपनी बॉक्सिंग कैरियर के बाद क्या करेंगे, उसने कहा मैं जी बस होता रहूँ, कराटे लेना शुरू हो गया, उसने कहा ये कैसे पॉसिबल, उसने कहा हम लोग पैदा होते हैं, हमारा बचपन होता है, हम लोग उस बचपन फेज से अगर चार साल तक तो बंदा बोल ही नहीं सकता, खड़ा हो सकता, चार साल हो गए, ठीक है, उसके बाद चार साल से लेके दस साल तक अगर आप पीरियड आप ले लें तो उस वक्त हम चलना सीखते हैं, उसके बाद ये पाँच साल के होते हैं स्कूल में एडमिशन हो जाता है हमारा, उस दौरान में आप सोए रहते हैं, बचपन में भी सोते हैं, बड़े होकर भी सोते हैं, बुढ़ापे में भी सोते हैं। तो हमारी आप सोने का अगर अंदाजा लगा लें हम कितनी देर सोते हैं, हम सपोज आठ घंटे अगर रात को सोते हैं तो या दस घंटे सोते हैं, तो हमारी आधी जिंदगी का जो है वो सोने में गुजर जाती है। आपको खुद ज्यू करें कि हमारी जिंदगी सोने में गुजर जाती है और उसके साथ जो है एक क्वार्टर पीरियड जो है हमारा बचपन में गुजर जाता है, उसके बाद कुछ जो है हमारा स्टडी पीरियड में गुजर जाता है। तो जब हमारी परफॉर्म करने की बारी आती है तो उस वक्त हम सो जाते हैं। तो इसीलिए जो है ना आप इस चीज को देखेंगे, लाइफ बहुत शॉर्ट है और किसी की जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है, हर बंदे को जो है मौत पे ईमान हर बंदे का और होना भी चाहिए, वो किसी भी टाइम आ सकती है, किसी भी वक्त आप कहीं भी चले जाएं, आप चले जाएं स्विट्जरलैंड में, बहुत जबरदस्त मुल्क है वहाँ पे, बहुत ज्यादा वहाँ पे अनुवाद नहीं होती तो वहाँ पे भी अनुवाद होते हैं, मौत आनी है, लेकिन हम लोग जितना टाइम अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी है उसका एक अगर अच्छा व मकसद जिंदगी गुजार लें तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम उसको टाइम को जाया करें। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने अपनी जिंदगी बहुत टाइम जाया किया, लेकिन ये है कि अब मैं मेरी कोशिश ये है कि जो गलतियाँ मैंने की हैं मैं अपने जूनियर्स को, अपने दोस्तों को, भाइयों को, रिलेटिव्स को बताऊँ ताकि वो ये ना कर सके और वो कामयाब हो सके। और ये मैं आपको बता दूँ, कोई बंदा ये समझे कि मैं टॉप नहीं कर सकता, मैं अच्छे मार्क्स नहीं ले सकता, मैं अच्छी जॉब नहीं कर सकता, ये पॉसिबल है मेरी जिंदगी अंदर, मैं ये वर्ड बिल्कुल आती है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर कमिटेड और इफ यू आर हार्ड वर्क। अब कलर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप देख रहे होंगे जो वेलन वाला वर्ड है आपको नजर नहीं आ रहा, पीछे नजर आ रहा है ये सारा क्या लिखा हुआ नहीं आ रहा नजर. तो दैट मीन्स कि यू नीड टू यूज कलर इफेक्टिवली. डोंट यूज अ कलर विच आर नॉट प्रोमिनेंट. इवन द बैक बेंचर्स दे कैन नॉट सी, दे डोंट, दे विल नॉट बॉदर अबाउट दैट. और जो वो सोना शुरू कर देंगे भाई दोबारा तो नहीं सोना. नेक्स्ट प्लीज. हाई क्वालिटी इमेजेस. इमेजेस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है. जैसे मैंने वीडियोज की बात की कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर विजुअल इम्पैक्ट यूज करें. और विजुअल इम्पैक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बाज वर्ड जो है अब आपको इस विजुअल इम्पैक्ट से पता चल रहा होगा कि इसकी मीनिंग क्या है, ये क्या बता रहा है. नेक्स्ट प्लीज. और हाई क्वालिटी. ठीक है. अब जो एक सॉरी मुझसे गलती होगी, वाइट के अंदर थोड़ा सा आगे हाई क्वालिटी इमेजेस जो है वो आप यूज करें ताकि उसका इम्पैक्ट आता है प्रेजेंटेशन के अंदर. और हर स्लाइड के अंदर एक इमेज है वो लाजमी होना चाहिए ताकि आप जो बात करना चाह रहे हैं उसको जो है वो आप डिपिक्ट कर सकें. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्रैक्टिस. एंड इवन प्रैक्टिस का ये भी मतलब नहीं है कि आप जो म्यूजिक की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं. मैं इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक इमाम साहब मस्जिद में थे. इमाम साहब ने कहा कि यार आप अपनी ना जो वाइफ है उनको वाइफ सूखे खाने बनाने की जो है ना तारीफ करते हैं. ठीक है. तो अब घर में उमूमन ऐसे होता है कि जो है अगर आपकी वालदा खाना बना रही है या कोई बना रहा है, हम लोग कंप्लेन कर रहे थे आज मिर्चे ज़्यादा है, आज नमक ज़्यादा है. तो इमाम साहब ने यह कह दिया, हमने लोगों को कह दिया कि आप अपनी वीडियो की जो है और जाके खाना जो वो बनाती है उनकी तारीफ किया करें. एक बंदा घर चला गया, अब वो घर खाना खा रहा है और खाई जा रहा है, माशाल्लाह सुभानअल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह, एंड ख़त्म किया. और अपनी बीवी से कहता है इट्स ऑसम. कहती व्हाट? कहती है यू गिव द फूड यू कुक इज एक्सीलेंट, यू कुक एक्सीलेंटली. कहती है आई हैव बीन कुकिंग फॉर यू 24 इयर्स, वी नेवर सेड दैट. एंड व्हेन द टुडे द फूड कम्स फ्रॉम द लेबर यू सेड इट्स ऑसम. तो मकसद ये कहने का, मैं जो बातें कह रहा हूँ कुछ चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट है वो इम्प्लीमेंट करनी है आपने, और कुछ चीज़ें जो है वो थम रूल लेनी है जो आपको इजी लगता है वो करना है. कलर स्कीम जो है ये यूनिवर्सल है, आपको कलर स्कीम वो यूज करनी है जो कि विजुअल इम्पैक्ट दे, जो कि एंड तक जो बनाता है. नेक्स्ट फिटनेस. फिटनेस का हरगिज मतलब नहीं है कि आप जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें और कह दिया आज मेरी प्रेजेंटेशन है, कोई 10-12 टर्न निकाल दें और बैठ के निकालना शुरू कर दें. तो फिटनेस का हरगिज ये मतलब नहीं है. फिटनेस का मतलब ये है कि आप ग्रेजुअली स्टार्ट करें अपनी प्रेजेंटेशन को और देन क्विकली गो टू योर टॉपिक और लोगों को क्या बोलते समझ लेते हैं. द मोर यू प्रैक्टिस बेटर यू फील, मोर यू वॉन्ट टू डू. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है ना वो एक्सपीरियंस होगा, उतना ज़्यादा बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अब प्रैक्टिस का तरीका क्या है? जब आपकी प्रेजेंटेशन तैयार होगी आप या तो आईने के सामने खड़े हो जाए, ऑनेस्टली जो ना होना चाहते ठीक कर दें, आप मिरर के सामने खड़े हो जाए और उसको प्रैक्टिस करें. और आप एक एक वर्ड जो है वो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और बार बार एटलीस्ट 6 टाइम्स जो है वो एक एक प्रेजेंटेशन को जो है वो आप प्रैक्टिस करें 6 टाइम्स आने के सामने. या आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर फारिग आपका भाई है सिस्टर है कोई भी है उनके सामने जो है फेस टू फेस आप प्रेजेंटेशन दे और जो गलतियाँ होंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आ गई हैं जिन्हें आपसे डिस्कस करें. तो ये प्रैक्टिस का तरीका है, एक तो आने के सामने और दूसरा जो है आपने क्या करना है घर में कोई भी है रिलेटिव कोई बहन भाई उससे उसके सामने आप प्रैक्टिस करें. और प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है वो बिल्कुल कूल माइंड हो, आसपास कोई म्यूजिक कोई चीज़ ऐसी ना लगी हो कि जिससे आप डिस्टर्ब हो या कोई बच्चे जो है आपस में हो वहाँ पे खेल वगैरह में हो इस तरह का नहीं होना चाहिए. तो प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट है. एक चीज़ मैं और आपको रिकमेंड करूँगा कि अपने जो इंग्लिश है उसको इम्प्रूव करने के लिए डेली का आधा घंटा जो है वो CNN न्यूज़ जो है चैनल आपने वो आपने जो है वो देखना है. ठीक है. आधा घंटा या 15 से 20 मिनट एक उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आपकी एक तो वोकैबुलरी बढ़ेगी, दूसरा एक्सेंट जो है वो आपको इम्प्रूव होगा और तीसरा ये कि आप फ्लुएंट हो जाएंगे इंग्लिश में. और कोशिश ये करें कि जो वो बात कर रहे होते हैं क्योंकि देखें हर इंग्लिश एक ऐसा मीडियम है जो कि हर पूरी दुनिया के अंदर यूज होता है. ठीक है. और अब आप कोई बंदा ये कहे कि नहीं जी हमारी जुबान तो उर्दू है तो हम उर्दू ही सीखेंगे उर्दू में ही बात करेंगे, लेकिन अगर आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे और इंग्लिश बोलना नहीं आएगी और इंग्लिश को प्रोनाउंसिएशन नहीं करनी आएगी तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। CNN आधा घंटा या एटलीस्ट 15 से 20 मिनट, और जो जिस तरह वो न्यूज बोल रहे होते हैं और वही उसी तरह आप रिपीट करें, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि 1 से 2 माह के अंदर आपको जो है ना फ्लुएंसी इंग्लिश के अंदर जो है वो आप आ जाएंगे। ये मैंने प्रैक्टिस की, मुझे मेरे टीचर ने बताया। नेक्स्ट प्लीज, प्रैक्टिस रूम एवरीथिंग टेक्नोलॉजी दीज थिंग्स ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू दैट आपको लोकेशन का पता होना चाहिए, आपको ऑडियंस का पता होना चाहिए कि ऑडियंस कैसी है, और देन टेक्नोलॉजी मल्टी मीडिया है वहाँ पे है नहीं है, आपने व्हाइट बोर्ड पे कर लिए। नेक्स्ट प्लीज, इट्स नॉट अबाउट यू। अगर मैं आपको कहूँ कि कोई बंदा एक आ जाए और ये यहाँ से प्रेजेंटेशन पढ़ना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल सारे ही पढ़ लेंगे, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स ओनली द कॉन्टेंट विच यू आर गोइंग टू डिस्कस, द टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मटीरियल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्लीज, फोकस ऑन योर गोल, व्हाट यू आर गोइंग टू से नेक्स्ट। Audience, make them comfortable and interesting. Don't make them feel that they are feeling. एक बंदा मेरे ख्याल unfortunately सो रहा है, बाकी सारे जाग रहे हैं अलग अलग, तो ऐसा ना लगे कि आपको बोरिंग का बोरिंग एक डिस्कशन स्टार्ट कर दी है। तो मेक दम कम्फर्टेबल, उनके साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए और इंटरेक्शन। क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर आप मुझे कहें कि मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया हूँ तो ये गलत बात है। इंसान बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो है वो सीखता है, हर चीज़ के अंदर परफेक्शन आ सकती है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हो गया, परफेक्शन जो है वो सारी जिंदगी जो है वो किसी भी, चाहे आपकी इस्लामिक जिंदगी है, चाहे दुनियावी है, चाहे आपके रिलेटिव हैं उनके साथ हकूक लिबाद की बात है, उसके अंदर परफेक्शन आ सकती है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं जो है वो हर आखिर में परफेक्ट, ये नहीं हो सकता। Becoming confident, be over prepared. Already I've discussed with you that you should repeat it and you should practice it at least 6 times if you want. Know your subject, use relaxation techniques, be positive and avoid stressor. Stressor बाद लोगों को बहुत ज़्यादा होता है कि audience के सामने जा रहे हैं, हर बंदे से होती है। Start में जब presentation कोई भी, अगर मैं किसी बंदे को यहाँ पे आएगा, मेरे साथ क्या हो रहा था, मेरी टांगें काम रही थी, उससे अल्फाज नहीं निकल रहे थे, लेकिन क्या है कि प्रैक्टिस के साथ every day, every time you are in your home, you are with your family, you can practice, and by that practice you can become create perfection. That's it. But most importantly, you should sleep well and you should take rest. और जो स्लीप एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके वाले से मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि आपको नींद जरूर पूरी करनी चाहिए। 6 से 6 घंटे नहीं, मैं तो मेरा जो एक्सपीरियंस 8 घंटे, अगर आप 8 घंटे नींद पूरी नहीं करेंगे तो आप सारी दिन में जो काम आपने करने हैं वो पॉजिटिवली नहीं कर सकते। आप क्लास में जाएंगे, क्लास में बैठ के सो रहे होंगे, आपका नींद पूरी नहीं होगी, आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा टॉपिक के अंदर, आपको लगेगा कि नहीं ये मैं पूरी करूँगा, काम भी करूँगा, लेकिन उसका नुकसान अल्टीमेटली इतना ज़्यादा है जो कि आपको नहीं सोच नहीं सकते। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। When you are presenting, you should not still stand on one place, and you should not put your hands in the pocket, right? And you should move here and there. And your eye contact is very much important, that it should be in zigzag motion, either say there, either say there. Now, the logon ka jo interaction hai aapke saath rahe, koi banda ye na kahe ki ek hi jagah pe jo hai wo speaker jo hai wo focused ho gaya aur ye ek hi bande ko sunane aaya, baaki kisi ko zarurat nahi. To aapki eye बॉल मोशन जो है वो zigzag होनी चाहिए, आपकी मोबिलिटी होनी चाहिए, आप एक जगह पे खड़े ना हो, पोडियम के पीछे ना छुपे, ठीक है। जब आप पोडियम के पीछे छुपेंगे तो फिर ओबेसिटी प्रॉब्लम है। अभी मैं आपको एक काम कहने लगा हूँ, आपने मुझे करके बताना, उससे मैं अंदाजा बताऊंगा कि आप कैसे प्रेजेंट करें। अपने जो दोनों हाथ हैं उनको आप बंद करें, दोनों हाथों को बंद करें। कोई ऐसा बंदा जिसने अपने जो अंगूठे हैं अंदर वाली साइड पे बंद किया, कोई ऐसा बंदा जिसने अंगूठे अंदर वाली साइड पे आपने बंद किए, चलो ये एक आप इधर आ जाएगा, आपका नाम क्या?
मैं ब्रह्मा, अपना कहाँ से? चकवाल।
और क्या करें?
इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, सिविल इंजीनियर।
तो ग्रेजुएट अच्छा ये जो जेस्चर है ना ग्रुप ऑफ अंदर वाली साइड पे, ये एक स्ट्रेस का जेस्चर है कि टेंशन में वो बंदा उस वक्त जो है वो करता है। नॉर्मली ये होता है कि आप प्रेजेंटेशन एग्जाम में वाइवा देना है अपने, ठीक है, फिर आप इस तरह करना है, ठीक है, तो ये इस जेस्चर को जो है ना वो आप अंदर रखेंगे। तो जब तक आपका पॉजिटिव आपका जो मुखा जो ऊपर वाली साइड पर नहीं आएगा तो दैट मीन्स यू आर नॉट इन अ स्ट्रेस, यू आर कंफर्टेबल आप किसी बंदे की बॉडी को देख के आप जज कर रहे हैं कि ये बंदा परेशान है, क्या कहना चाह रहा है और क्या करना चाह रहा है और क्या करेगा नेक्स्ट 5 मिनट, ठीक है। अब जो यहाँ से मैं ऑडियंस को देख रहा हूँ, हम लोग पता है हमारी परसेप्शन ये कि हमारे टीचर पढ़ा रहा होगा, हम पीछे बैठे तो हम कहते हैं टीचर को कुछ नहीं पता, लेकिन अगर आप यहाँ पे आके खड़े हो गए ना कोई बंदा तो उससे सब पता चल रहा होता है कि कौन क्या कर रहा है। नेक्स्ट, सो प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, योर बॉडी लैंग्वेज, यू शुड बी नॉट स्टैंडिंग इन वन प्लेस, यू शुड नॉट बी बिहाइंड द पोडियम, यू शुड मूव अराउंड एंड योर मोबिलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन योर आई कॉन्टैक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट यू शुड मेंटेन योर आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस, विद ईच एंड नॉट विद ईच एंड एवरी पर्सन, इफ नॉट पॉसिबल दैट इट शुड बी इन अ zigzag motion. Words, why is body language eye contact? I already discussed with you, and if anything will not be clear to you, you can ask me any question at the end of the presentation. Next. Show your passion. आप उस बच्चे को देख के आपको लग रहा है कि passion, आप passion क्या है? Passion एक ऐसी emotion है जो कि आपको कोई काम करने पे compel करती है, ठीक है। आप हर बंदे का different passion होगा, कोई बंदा कहेगा कि मुझे reading का passion है, कोई बंदा कहेगा कि मुझे जो है वो खेलने का पैशन है, बाद लोग क्रिकेट खेलते हैं, बाद हर बंदे का पैशन डिफरेंट है। तो अपना पैशन एक तो जो है वो इस्लामिक पैशन वो लाजमी होना चाहिए, वो हर हाल में होना चाहिए जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं। दूसरा पैशन होना चाहिए आपको सक्सेस का, सक्सेस का पैशन ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी को ऐसे प्लान करें कि आपने जो अचीव करना चाह रहे हैं, आपका विजन और ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप सिविल इंजीनियर थे, कुछ इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट से काफी ज्यादा लोग हैं, बाकी यूनिवर्सिटी से भी होंगे, तो आपको अपना विजन क्लियर होना चाहिए। जब आपको ये क्लियर होगा तो फिर आप जो है वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो पैशनेट होना चाहिए, वो ऑलरेडी डिस्कस। नेक्स्ट, स्माइल, ऑलरेडी डिस्कस। नेक्स्ट, डीलिंग विद द पर्सन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट व्हेन यू आर डीलिंग विद द पर्सन यू नीड टू थैंक योर द पर्सन हु इज लिसनिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन रिपीट द पर्सन, और ये शायद रूल है, ये हम रूल है कि आप इसी तरह करें। ये कर्टसी में भी आ जाता है कि अगर पर्सन पूछ रहा है आप उसका थैंक यू करें, अगर आपको पर्सन की समझ नहीं लगी आप रिपीट करें कि आपके कहने का मकसद ये है, उसको हम कहते हैं रीफ्रेजिंग, रीफ्रेज करना पर्सन। देन आंसर द पर्सन, चेक विद द पर्सन दे आर सेटिस्फाइड, किससे पूछ रहे हैं आप सेटिस्फाइड हैं, आपको अपना जो है वो जवाब मिल गया, और थैंक देम अगेन। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कर्टसी, बाय दिस वे यू विल बी गिविंग रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन हु इज लिसनिंग। एंड इवन इफ यू डोंट नो समथिंग, यू डोंट नो एनी क्वेश्चन, इफ समबडी आस्क्स मी अ क्वेश्चन आई डोंट नो, आई विल स्ट्रेट फॉरवर्डली से दैट आई एम रियली वेरी सॉरी आई डोंट नो दैट क्वेश्चन, आई विल गेट बैक टू यू विद इन 5 मिनट्स और मे बी आफ्टर 1 डे, मे बी आफ्टर 2 डे, बट यू शुड आंसर लाइक दिस। Presentation guidelines. Presentation, remember only you can prevent death by PowerPoint. This doesn't mean that PowerPoint will save you from your life. That means that PowerPoint is a tool by which you can prepare your presentations, you can present in a good manner. Word के ऊपर अगर आप कहें presentation दे तो कोई मतलब नहीं दे सकते, तो कोई sense नहीं बनती। Excel के ऊपर कोई कहे presentation देगा उसकी कोई sense नहीं बनती। Next. तो अगर आप पावर पॉइंट भी यूज करेंगे तो ये सूट लोगे लोगों सॉरी होंगे। नेक्स्ट, फॉन्ट साइज, वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक के फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए। फॉन्ट साइज है नॉर्मली 32 के दरमियान, 30, नॉट लेस देन 30, क्योंकि विजिबल आपका फॉन्ट साइज तभी होगा जब 30 होगा, ये 32 है। और जो आपने यूज कर रहे हैं फॉन्ट्स एरियल, कोमा और वेराडाना, ठीक है, ये फॉन्ट साइज आप ये स्टैंडर्ड है, इनको यूज करेंगे। तो आगे मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि क्यों दूसरे फॉन्ट साइज जो आप यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट, द लार्जर द बेटर, रिमेंबर योर स्लाइड्स मस्ट बी रीडेबल इवन एट द बैक ऑफ द रूम, तो पीछे तक लोगों को पता चले कि आप क्या बोल रहे हो, क्या प्रेजेंटेशन चल रही है. दिस इज अ गुड टाइटल साइज वर्डाना 40 पॉइंट, गुड सब टाइटल और बुलेट पॉइंट साइज वर्डाना 32. सब टाइटल जो अगर आपने देना है तो वो 40 होना चाहिए उसका फॉन्ट साइज, और जो उसके नीचे आप जो कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं वो 32 पॉइंट. कंटेंट टेक्स्ट शुड नॉट बी स्मॉलर देन वर्डाना 24 पॉइंट. बट आई रिकमेंड यू, आई ऑलरेडी टोल्ड यू सम थिंग्स आर थंब रूल बट सम थिंग्स आर अप टू यू. अगर विजिबल है, अगर ऑडियंस 10-12 लोग बैठे हुए हैं तो आप 24 भी रख सकते हैं, बट इट इज रिकमेंडेड दैट 30 शुड बी द फॉन्ट साइज. नेक्स्ट, ये नीचे जो फॉन्ट लिखा हुआ है सारा किसी को भी समझ नहीं लगी कि क्या लिखा हुआ है, और मैं भी कुछ लोगों की नजर बहुत ज्यादा काफी नजरें हम बहुत से नजर आ जाए बात है लेकिन नहीं पता चलता, इसलिए फॉन्ट साइज का आप समझ लेंगे. नेक्स्ट, दिस इज अ डोंट दैट यू शुड नॉट डू दिस थिंग, यू शुड नॉट राइट स्मॉलर लेटर्स एंड यू शुड ड्रॉ, यू शुड यूज बिगर फॉन्ट्स एंड दीस फॉन्ट साइजेस यू नोबडी कैन से व्हाट इट इज, सो यू शुड नॉट यूज दिस टाइप ऑफ फॉन्ट्स. The font which I already told you is Verdana and Arial, and the font size should be 32 to 40. Next. Caps and italics. Caps and italics are very much important. Capital letters we use where you have the main heading, there we use it. And italic, आप तब यूज कर सकते हैं जबकि आपने कोई चीज कोड हाईलाइट करनी है, किसी का पोल है, कोई किसी की सेइंग है, आइंस्टाइन है, कोई भी इस्लामिक है, उसको आप हाईलाइट जब करें तो टैली होना चाहिए ताकि वो डिफरेंट लगे. नेक्स्ट, यूज अ टेम्पलेट. अब टेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ लोगों ने जो है वो ऐसा टेम्पलेट यूज किया हुआ है, मैं आगे एक एग्जाम्पल शेयर करूंगा दूसरा टेम्पलेट नहीं होना चाहिए. पीछे करना प्लीज, यूज अ सेट फॉन्ट एंड कलर स्कीम, डोंट डिफरेंट स्टाइल्स आर टू द ऑडियंस डिफरेंट, क्योंकि ऑडियंस के लिए जरूरी है कि एक विजुअल इम्पैक्ट उसका क्लियर हो. तो आपने जो स्कीम यूज करनी है डार्क स्लाइड होगी बैक साइड पे और उसके ऊपर लाइटर फॉन्ट होगा. अगर मैं आपको कहूँ कि मैं इस ब्लू जो इसका बैक है उसके ऊपर जो है वो ब्लू यूज करूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा, अगर मैं ग्रीन यूज करूँ इवन देन वो पेंचिंग टू द आईज है. ठीक है, इसलिए आप डार्क स्लाइड आइदर व्हाइट और अदर ब्लू टू आई रिकमेंडेड कि आप ब्लू यूज करें और व्हाइट यूज करें, और ब्लू व्हाइट के ऊपर ब्लैक कलर का फॉन्ट होना चाहिए और ब्लू के ऊपर जो है व्हाइट कलर का होना चाहिए क्योंकि विजिबल. नेक्स्ट प्लीज, और उसका जो बैकग्राउंड है वो सारी स्लाइड्स के ऊपर सेम ही यूज होना चाहिए, यानी एक के ऊपर रेड ये रखे. अब ये अब ब्लू के बाद इस तरह की स्लाइड आ जाएगी, एक तो लोगों को समझ नहीं लगेगी कि क्या हो रहा है, और दूसरा कलर स्कीम इस तरह की है कि लोग जो है उसको सही तरह पढ़ नहीं सकेंगे. नेक्स्ट प्लीज, दिस इज द प्रॉब्लम. अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, ये थंब रूल है कि कुछ कलर ऐसे होते हैं जो कलर ब्लाइंड लोग हैं उनको नहीं पता चलता उस पर कि ये कौन सा कलर है. लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल, रेड्स एंड ऑरेंजेस आर हाई एनर्जी बट कैन बी डिफिकल्ट टू स्टे फोकस्ड ऑन, क्या कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर फोकस नहीं कर सकते. ग्रीन्स ब्लूज एंड ब्राउन्स आर मेलोर बट नॉट एज अटेंशन ग्रैबिंग, सो ये कलर आप बिल्कुल यूज ना करें. ये प्रेजेंटेशन मैं आपको मेल कर दूंगा अगर आपको चाहिए होगी, अभी बाद में मैं आपको दे दूंगा, इसलिए आप लिखना चाहें लिखना, लेकिन रिकमेंडेड ये है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप फिलहाल इस पर ही कॉन्सेंट्रेट करें. रेड्स एंड ग्रीन्स कैन बी डिफिकल्ट टू सी फॉर दोज हु आर कलर ब्लाइंड, तो आपने देखा कि रेड और ग्रीन जो है वो काफी ज्यादा है, तो रेड और ग्रीन कलर आप बिल्कुल यूज ना करें अपनी स्लाइड्स के अंदर, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई भी दे रहे. अवॉइड दीज कॉम्बिनेशन, ग्रीन और ब्लू, डार्क येलो, जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बता दिया वो आप वही यूज करें, और वो एक थंब रूल समझ लें कि ब्लू के ऊपर व्हाइट फॉन्ट और व्हाइट के ऊपर ब्लैक फॉन्ट, ये दो चीजें जो है दो विजिबल है, आई कैचिंग है, और बंदा जो देख रहा है उसको ज्यादा इतना डिस्टर्ब नहीं करते. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर हो गया डिस्कस. नेक्स्ट, 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 ग्राफ्स एंड चार्ट. एक सिंपल बस मैसेज है इसके हवाले से कि ग्राफ और चार्ट कभी भी आप यूज ना करें, क्योंकि एक तो आप देख रहे होंगे कि इस ग्राफ से कुछ किसी को भी कुछ समझ नहीं लगेगी, आप इसको डिस्कस करना शुरू कर देंगे, स्क्रैप कर देंगे, कुछ भी पता नहीं चलेगा ऑडियंस को तो क्या होगा. नेवर यूज दिस ग्राफ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ग्राफ आप बार यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, 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 पीछे पीछे चार्ट एंड ग्राफ, यू कैन यूज चार्ट एंड ग्राफ बाय दिस by highlighting the results of your graph, even if you are presenting a study or any statistical data, then you can present by these ways. model A, model B, and model C, and by showing these bars, you can discuss your study. Next. Limit each slide to one idea. आपकी एक स्लाइड के ऊपर एक आइडिया होना चाहिए कि आपने अगर सपोज आपने डिस्कस करना है कि विजुअल ऐड क्या होती है तो उसके ऊपर विजुअल की बातें होनी चाहिए, ठीक है? और अगर वो उससे सब्जेक्ट उससे बढ़ गया एक स्लाइड से तो आप नेक्स्ट स्लाइड पर ले जा सकते हैं. और यूज बुलेट पॉइंट्स टू कवर कंपोनेंट्स ऑफ ईच आइडिया, कि बुलेट पॉइंट आप यूज करें ताकि लोगों को समझ लगे कि ये नंबर वन पॉइंट है, नंबर टू है, नंबर थ्री पॉइंट है. इस तरह मैंने आपको कहा था फोर पीस ऑफ प्रेजेंटेशन किया है कि प्लान है, प्रिपेयर है, प्रैक्टिस है और देन प्रेजेंट है. नेक्स्ट बुलेट्स का डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, points to remember. These points are very much important. You need to remember. Keep bullet points brief. Use the same background for each slide. And use dark slides with light color text in large font. Next, please. ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको जो है वो काम आएंगे. डू नॉट यूज द मीडिया टू हाइड यू, कि आप स्लाइड से ग्राउंड को मीडिया जो है वो ना यूज करें, ठीक है? आप प्रेजेंटेशन से ज्यादा पहले यूज कर रहे हैं, आपने कोई वीडियो चलानी है या बाद में यूज कर रहे हैं. ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन डोंट यूज एनी मीडिया. द ऑडियंस केम टू सी यू, द मीडिया शुड एनहांस द प्रेजेंटेशन, नॉट बी द प्रेजेंटेशन. If you are only going to read from the slide, then just send them the slides. As I already discussed with you that you should be having one point on one slide, and then you can discuss with your audience at what you are going to say. I have given some examples. I filled all the things because of hum rule ki guidelines ki uske andar aap kuch baatein cutting kar sakte hain aur us idea ko change kar sakte hain. Thank you very much for this presentation and for your active listening. And if you have any questions, you are more than welcome. हाँ बिल्कुल, आप एंड पे मैंने नेक्स्ट है ना प्लीज.
पाकिस्तान के बिजली के हालात हैं तो लाइट चली जाती है तो वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा बिजली.
आपकी बात सही है. उसमें ये है कि जो प्रेजेंटर का काम ये है कि उसके पास ये सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड होनी चाहिए कि लाइट भी जा सकती है, आपने ऑडियंस के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है. तो इसलिए मैंने कहा कि ये स्लाइड सारी चीजें नहीं है. अगर ये स्लाइड ही पढ़नी होती तो मैं आपको कहता कि आप यहाँ से पढ़ लें. आपके पास जो नॉलेज होगा वो आप लाउडली जो है वो कन्वे कर सकते हैं. लेकिन थंब रूल यही है कि जहां पर भी आप प्रेजेंटेशन देंगे या प्रोजेक्टर यूज करेंगे या पावर पॉइंट यूज करेंगे. सो पावर पॉइंट यूज करेंगे, प्रोजेक्टर तो यूज करेंगे ही करेंगे. तो पावर पॉइंट जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो यूज होता है फॉर प्रेजेंटेशन. लाइट चली जाती है वो एक अनदर इशू है, बट अगर लाइट चली जाती है तो आप अपने ऑडियंस के पास जो आपने स्लाइड नेक्स्ट कमिंग स्लाइड है वो आप वैसे उनसे डिस्कस कर. आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि जी स्लाइड प्रेजेंटेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है. बॉडी लैंग्वेज, ठीक है? बॉडी लैंग्वेज पे जाकर लाइट चली जाती है. अब मुझे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिसनिंग है, ठीक है? अब मैं ऑडियंस वैसे डिस्कस करना शुरू कर दूंगा कि लिसनिंग क्या चीज है, लिसनिंग के अंदर चीजें क्या इंपॉर्टेंट है. यू शुड हैव द नेक्स्ट स्लाइड इन योर माइंड that what it is going to be and what you are going to discuss in your next slide. Even sometimes light nahi bhi jati, laptop bandh ho jata hai. Aapka question valid hai, no doubt. Thank you very much for discussing. उसमें यह है कि आप जो है ना उसको अपने नॉलेज को लोगों तक ट्रांसफर कर सकते हैं विद योर वॉइस विद योर वोकल कॉर्ड्स. दिस इज द ओनली वे यू कैन डिस्कस.
हाँ, और आपने कहा कि वो आउट ले वो जो देना चाहिए कि अगर हम इस तरह के जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसको हम प्रिंट निकलवा के सारों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें उसके बाद प्रेजेंटेशन दें तो क्या ये ठीक
है? ये मैं इस चीज को रिकमेंड नहीं करता. अगर मैं आपको इस तरह हैंड आउट पूरी प्रेजेंटेशन के दे देता तो हर बंदा वो पढ़ रहा होता. एक तरफ उधर देखता फिर उधर देखता, वो उसको टैली कर रहा था कि पता नहीं सही लिखा है इधर और लिखा उधर और लिखा. तो इसलिए बेटर यह है कि जो चीजें मैंने आपको स्लाइड्स के थ्रू बताई है कोई भी बताएगा, आप उस प्रेजेंटेशन को बाद में स्टडी कर रहे हैं जो चीजें आपको क्लियर नहीं हुई. एनी अदर क्वेश्चन? और बंदा जो वो सोता वो दिखा दिया, उससे ये हुआ कि एक तो विजुअल इम्पैक्ट आ गया आपको पता चला चल गया क्या है, और दूसरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसका मतलब क्या कि आपने जो है वो प्रेजेंटेशन से पहले रेस्ट करना है या आप अपनी नींद पूरी करें जो कि इम्पोर्टेंट है किसी भी काम से पहले. एनी अदर क्वेश्चन?
सर आई हैव अ क्वेश्चन. सर आपने पहले एक वर्ड बोला था कि कुछ फ्रेंड एग्जॉस्ट हो चुके हैं उससे क्या मतलब है, और दूसरा आपने एक पैशन के बारे में भी बात की तो फिर अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी सर कैसे दिखाए गए?
इन्होंने कहा कि आपने बात की कि कुछ लोग जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे.
एग्जॉस्ट इसलिए हो जाएंगे कि क्योंकि एक तो सेशन अगर लंबा होगा आप कुछ सेशन होते बहुत लंबे आप क्योंकि टाइम का स्ट्रेंथ है आपके पास यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्कस होने वाली हैं तो ऑब्वियसली एक एनर्जी लेवल होता है हर बंदे का. तो जब वो एनर्जी लेवल डाउन होता है तो उसकी वजह से जो है वो बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है. दूसरा एग्जॉस्ट क्यों होता है कि अगर जो प्रेजेंटर जो बताया है वो इंटरेस्टिंग ना हो वो बोरिंग हो तो बंदा एग्जॉस्ट होता है. तीसरी बात ये कि जो प्रेजेंटर जो चीज बता रहा है वो लोगों को समझ ना आ रही हो तब बंदा एग्जॉस्ट होता है. वो कहते हैं यार ये इसको तो पता नहीं है मुझे समझ नहीं लग रही. कुछ लोगों को समझ नहीं लग रही होती कुछ प्रेजेंटर को बताना नहीं आ रहा था तो बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है. बंदा एग्जॉस्ट तब होता है जब बंदा रात को सोया ना हो. तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल, सो मेनी एग्जाम्पल. दूसरा आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि पैशन के हवाले से मैंने डिस्कस किया. कोई भी चीज आप उस वक्त तक सक्सेस जो हाई परफॉर्मेंस और हाई सक्सेस आप हासिल कर सकते हैं जब आपके अंदर पैशन होगा. जब पैशन ही ना होगा आपके अंदर एक लगन ही नहीं है काम करने की तो आप उसको कैसे अचीव करेंगे? मैं आपको कहूंगे एक बंदे को आप यार वो फुटबॉल खेलता है उसे मैं कहूंगे यार आपने आज के बाद क्रिकेट खेली फुटबॉल नहीं खेलना. उसका पैशन ही नहीं है वो उसको करना ही चाह रहा आप उसको कैसे. लेकिन पैशन जो है वो पैदा किया जा सकता है. पैशन पैदा किया जा सकता है अपने इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट को देखें, अपने जो इस्लामिक कुछ रोल मॉडल है हमारे पास उनको देखें, उनके जरिए जो उन्होंने सक्सेस हासिल की है और जो इस्लाम की बगावत करी है उन्होंने काम किए हैं वो एक हमारे लिए रोल मॉडल है. ठीक है, उन चीजों को हम इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ के अंदर पैशन बना सकते हैं. दूसरी चीज ये कि बीइंग ए मुस्लिम हमें हमारे लिए एक काम होना चाहिए कि हम जो है अगर कोई काम हमने करना है तो उसको नेक नियति से करें. नेक नियति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और तीसरी जो चीज है वो आपकी परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट एफर्ट है कि अगर आप परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट एक बंदा जो है उसके मार्क्स की एग्जाम्पल दी मैंने कम आया वो बंदा डिप्रेस हो गया और वो नेक्स्ट टाइम ट्राई नहीं करता तो दैट मीन्स उसका पैशन नहीं है और वो आगे बढ़ ही नहीं सकता. तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि आप हर वो काम कर सकते हैं पॉजिटिव में जो एक काम बंदा कर सकता है और आप एक बेटर प्रोफेशनल बनने के लिए प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, आपकी पैशन बहुत जरूरी है और आपकी अटेंशन बहुत जरूरी है. एनी अदर क्वेश्चन? लास्ट टू क्वेश्चन
वो मेल कर देंगे. Thank you.
جو میری ریکویسٹ ہے وہ ہے پیرنٹس کے حوالے سے، اگر آپ وہ ویڈیو دو منٹ کی چلا دیں گے. اس کو غور سے دیکھیے گا پلیز. باپ بیٹا بیٹھے ہوئے دونوں، اب آپ آگے ایکشن دیکھیں ہوتا کیا.
نیچے سب ٹائٹل انگلش میں آ رہا ہوگا، آپ انگلش پڑھیے گا، ویسے اسپینش میں. واٹ از دیٹ؟ باپ بیٹے سے پوچھ رہے کیا؟ کہہ رہے چڑی ہے اسپیرو. دوبارہ پوچھ رہے واٹ از دیٹ؟ دو دفعہ پوچھ لیا اس نے بیٹے سے. باپ بوڑھا ہو چکا ہے اور جو بچہ ہے اس کا وہ جوان ہے اور ہائپر ہو گیا اپنے والد کے ساتھ. پاگل ہو گئے اور آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی چڑیا. Now look at the reaction of his father. اپنی ڈائری لے آیا، اسے کہہ رہے ہیں کہ اسے پڑھو اور اونچا پڑھو تاکہ مجھے آواز آئے. ریڈ اٹ لاؤڈ. میرا بچہ جو کہ 3 سال کا ہو گیا اور پارک میں بیٹھے ہوئے اس نے میرے سے 21 دفعہ پوچھا کہ یہ کیا ہے اور میں نے 21 دفعہ جواب دیا کہ یہ چڑیا ہے. I hugged him every single time and he asked me the same question again and again. Without getting mad, feeling affection for my innocent little boy. So the main theme that you should love your parents, they are most important thing you have in your life.
Thanks.